लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे कलीसिया के उप याजकों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि याजक वर्ग सुसमाचार और निर्धनों के प्रति सत्यनिष्ठ रहते हुए संपूर्ण कलीसिया के लिए एक स्फूर्तिदायक प्रतीक बने। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है बुधवार की आमदर्शन समारोह में संत पापा फ्रांसिस की धर्म शिक्षा माला, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओं, संत पापा फ्रांसिस ने अपने बुधवार ये आमदर्शन समारोह के अवसर पर वेटिकन प्रेरितिक निवास के पुस्तकालय से सबों का अभिवादन करते हुए कहा,
cari fratelli e sorelle, buongiorno. Facciamo oggi il secondo passo nel cammino di catechesi sulla preghiera iniziato la settimana scorsa.
प्रिय भाइयों एवं बहनों, सुप्रभात। आज हम पिछले सप्ताह प्रार्थना पर शुरू की गई अपनी धर्म शिक्षा माला के दूसरे चरण पर आगे बढ़ते हैं।
La preghiera appartiene a tutti.
प्रार्थना हम सबों को अपने में सम्माहित करती है, सभी धर्म के लोगों को और उन्हें भी जो किसी भी धर्म पर अपनी आस्था नहीं रखते हैं। प्रार्थना की उत्पत्ति हमारे व्यक्तिगत आंतरिक रहस्य की गहराई से होती है, जिसे आध्यात्मिक गुरु हृदय की संज्ञा देते हैं। अतः प्रार्थना कोई बाहर की बात नहीं है, यह अपने में कोई मामूली और अप्रधान बात नहीं, बल्कि यह हम मानव के अंतरतम गहराई का रहस्य है। हमारी भावनाएं प्रार्थना हैं, लेकिन हम यह नहीं कह सकते हैं कि केवल भावनाएं ही प्रार्थनाएं हैं। प्रार्थना करना अपने में बौद्धिक कार्य है, यद्यपि प्रार्थना केवल दिमागी क्रियाकलाप नहीं है। हम अपने शरीर से प्रार्थना करते हैं, लेकिन शारीरिक गंभीर अवस्था में भी एक व्यक्ति ईश्वर से बातें कर सकता है। इस भांति व्यक्ति जो प्रार्थना करता है, वह अपने हृदय से प्रार्थना करता है। संत पापा ने कहा,
La preghiera è uno slancio. È un'invocazione che va oltre noi stessi.
प्रार्थना अपने में अंतः प्रेरणा है, यह एक पुकार है जो हमसे परे जाती है। यह व्यक्ति के अंतःस्थल की गहराई से बाहर निकलती है, क्योंकि इसमें मिलन की एक तीक्ष्ण अभिलाषा होती है। हृदय की यह चाह अपने में एक आवश्यकता से वृहद होती है, यह एक राह की भांति होती है। प्रार्थना मैं की एक पुकार है, जहां वह अपने में टटोलता तुमको खोजने की कोशिश करता है। यहां हम मैं और तुम के मिलन का हिसाब नहीं कर सकते हैं। ख्रिस्तीय की प्रार्थना अपने में एक रहस्योद्भेदन से शुरू होती है, जहां हम तुम अर्थात ईश्वर को रहस्य में घिरा नहीं, अपितु हमारे साथ एक संबंध में प्रवेश करता हुआ पाते हैं। ख्रिस्तीयता वह धर्म है जहां हम ईश्वर को सदा अपने को अभिव्यक्त करता हुआ पाते हैं। साल के शुरू में कलीसियाई धर्म विधि के अनुरूप प्रभु प्रकाश का त्योहार मनाना हमारा ध्यान इस ओर इंगित कराता है कि ईश्वर अपने को छिपाकर नहीं रखते, वरन वे अपने लोगों के संग मित्रता में प्रवेश करते हैं।
Dio rivela la sua gloria nella povertà di Betlemme, nella contemplazione dei magi, nel battesimo a Giordano, nel prodigio delle nozze di Cana.
ईश्वर अपनी महिमा को बेतलहम की दरिद्रता, मंजूषियों के चिंतन, यर्दन नदी में बपतिस्मा, काना के विवाह भोज में प्रकट करते हैं। संत योहन रचित सुसमाचार की प्रस्तावना हमें एक संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करती है, अपितु एक वृहद भजन को हम इसमें पाते हैं। किसी ने ईश्वर को नहीं देखा, पिता की गोद में रहने वाले इकलौते पुत्र ने उन्हें प्रकट किया है। यीशु ख्रिस्त पिता ईश्वर को हमारे लिए प्रकट करते हैं। ख्रिस्तियों की प्रार्थना एक अति कोमल चेहरे के रूप में ईश्वर के साथ एक संबंध में प्रवेश करना है जहां हम मनुष्य में किसी तरह के भय को पदस्थापित होता हुआ नहीं पाते हैं। यह ख्रीस्तीय प्रार्थना की प्रथम विशेषता है। यदि मनुष्य ईश्वर के सामने हमेशा एक डर, एक संकोच के साथ इस रहस्य में प्रवेश करे, यदि वह ईश्वर की आराधना करने में दास के मनोभावों को धारण करने का आदि हो जाए, तो ऐसी परिस्थिति में हम पिता ईश्वर को अब्बा कहकर पुकारने की अपेक्षा पिता कहकर बुलाते हैं। ख्रिस्तीयता में हम ईश्वर के साथ अपने सामान्ती रिश्ते को नहीं पाते हैं। अपने विश्वास के विचार अभिव्यक्ति में हम गुलामी, दासता या उत्पीड़न का एहसास नहीं करते, बल्कि हम उन संबोधनों जैसे कि विधान, मित्रता, प्रतिज्ञा, एकता, निकटता जैसे शब्दों को देखते हैं। संत पापा ने कहा कि अपने शिष्यों से विदाई के पूर्व उन्हें दिए गए लंबे संबोधन में यीशु कहते हैं, अब से मैं तुम्हें सेवक नहीं कहूंगा। सेवक नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करने वाला है। मैंने तुम्हें मित्र कहा है क्योंकि मैंने अपने पिता से जो कुछ सुना वह सब तुम्हें बता दिया है। तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना और नियुक्त किया है। तुम जाकर फल उत्पन्न करो, तुम्हारा फल बना रहे और तुम मेरा नाम लेकर पिता से जो कुछ मांगो वह तुम्हें वही प्रदान करे। यह खाली चेक के समान है, संत पापा ने कहा। तुम लोग मेरा नाम लेकर पिता से जो कुछ मांगो वह तुम्हें वही प्रदान करेंगे। संत पापा फ्रांसिस ने कहा,
Dio è l'amico, l'alleato, lo sposo. Nella preghiera si può stabilire un rapporto di confidenza con lui.
ईश्वर हमारे मित्र, सहयोगी और दुल्हे हैं। प्रार्थना में उनके साथ विश्वास का एक संबंध स्थापित किया जा सकता है। इतना ही नहीं, हे पिता, हमारे की प्रार्थना में उन्होंने हमें बहुत सारी चीजों को मांगने हेतु सिखलाया है। हम ईश्वर से सब कुछ मांग सकते हैं, सभी चीजों का वर्णन करते हुए सारी बातों को बता सकते हैं। उनके साथ अपने संबंध को लेकर यदि हम गलती करते तो कोई बात नहीं, हम अच्छे मित्र नहीं हैं, हम कृतज्ञहीन संतान हैं, हम अपने में वफादार दंपत्ति नहीं हैं। इन सारी बातों के बावजूद वे हमें प्रेम करना जारी रखते हैं। इसे वे अंतिम व्यारी के भोज में यह कहते हुए व्यक्त करते हैं, यह मेरे नए विधान का रक्त है जो तुम्हारे लिए बहाया जाएगा। अपने इस अभिव्यक्ति में वे क्रूस के रहस्य को व्यक्त करते हैं। ईश्वर हमारे विश्वासी सहयोगी हैं। यदि हम उन्हें प्रेम करना छोड़ भी दें तब भी वे हमें प्रेम करना जारी रखते हैं, यद्यपि यह प्रेम उन्हें कलवारी की ओर ले चलता है। संत पापा ने कहा, ईश्वर सदा हमारे हृदय द्वार के निकट रहते और हमारी प्रतीक्षा करते हैं कि हम उसे खोलें। वे कभी कभी हमारे हृदय को खटखटाते हैं लेकिन हस्तक्षेप नहीं करते, वे प्रतीक्षा करते हैं। उनका धैर्य हमारे लिए पिता का धैर्य है जो हमें अत्यधिक प्रेम करते हैं। यह हमारे लिए माता पिता का धैर्य है जो हमारे हृदय के निकट रहते और वे जब कभी हमें दस्तक देते अपनी करुणा और प्रेम में ऐसा करते हैं। संत पापा ने कहा,
Proviamo tutti a pregare così, entrando nel mistero dell'alleanza, a metterci nella preghiera tra le braccia misericordiose di Dio.
हम विधान के रहस्य में प्रवेश करते हुए प्रार्थना करने की कोशिश करें। प्रार्थना के द्वारा हम अपने को ईश्वर की करुणामयी बाहों में रखें। हम अपने को उनके त्रित्व में जीवन के आनंदमय रहस्य में लिपटा हुआ अनुभव करें। हम अपने को अतिथियों की तरह देखें जो इस सम्मान के योग्य नहीं है। हम अपने आश्चर्य में ईश्वर से यह सवाल करें, क्या यह संभव है कि आप केवल प्रेम करना जानते हैं, उन्हें घृणा के बारे में पता नहीं है। उनसे घृणा की गई लेकिन वे घृणा को नहीं जानते हैं। ईश्वर ऐसे हैं जिनके पास हम प्रार्थना करते हैं। संत पापा ने कहा, यह ख्रिस्तीय प्रार्थना का उद्दीप्त सार है। हमारे पिता हमारी प्रतीक्षा करते जिससे वे हमारे साथ चल सकें। इतना कहने के बाद संत पापा फ्रांसिस ने अपनी धर्म शिक्षा माला समाप्त की और सभों के संग हे पिता हमारे प्रार्थना का पाठ करते हुए सभों को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद प्रदान किया।
Aiuterium nostrum in nomine Domini. benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने बुधवार 13 मई को संत मार्था के प्रार्थनालय में फतिमा की माता मरियम के आदर में पवित्र ख्रीस्त याग का अनुष्ठान किया। पवित्र मिसा शुरू करने से पहले सभी विद्यार्थियों और शिक्षकों को याद कर उनके लिए प्रार्थना की। संत पापा ने कहा, आज हम सभी छात्रों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अध्ययन कर रहे हैं, और शिक्षक गण जो शिक्षण को आगे बढ़ाने के लिए नए तरीके ढूंढ रहे हैं। प्रभु इस यात्रा में उनकी मदद करें, उन्हें साहस और एक बड़ी सफलता प्रदान करें। अपने प्रवचन में संत पापा ने बुधवार के सुसमाचार पाठ पर टिप्पणी की, जिसमें यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं, मैं सच्ची दाखलता हूँ और मेरे पिता बागवान है। वह उस डाली को जो मुझ में नहीं फलती काट देता है, और उस डाली को जो फलती है छांटता है, जिससे वह और भी अधिक फल उत्पन्न कर सके। संत पापा ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि ख्रिस्तीय जीवन यीशु के साथ बने रहने में ही है, निष्क्रिय रूप से बने रहने में नहीं, लेकिन सक्रिय रूप से बने रहने में ही ख्रिस्तीय जीवन की सार्थकता है। यीशु का हमारे साथ बने रहना, यह ख्रिस्तीय जीवन का रहस्य है। संत पापा ने कहा कि यीशु दाखलता है और हम उसकी डालियां। डालियों को जीने के लिए रस की जरूरत होती है, और वह तने या दाखलता से प्राप्त होती है और फलती फूलती है। जिस तरह डालियों को दाखलता की जरूरत होती है, उसी तरह दाखलता को डालियों की जरूरत होती है। दाखलता में फल नहीं लगते, फलने के लिए डालियों की जरूरत होती है। इस तरह हमारा और यीशु का आपस में संयुक्त रहने में ही ख्रिस्तीय जीवन की सार्थकता और कलीसिया का प्रसार संभव है। इस फलदायी आपसी संबंध में यीशु को हमारी गवाही की आवश्यकता है। हम अपने जीवन और कार्यों द्वारा यीशु की गवाही देते हैं। यीशु को हमें उसके नाम के गवाह बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारी गवाही से सुसमाचार का प्रसार होता है। संत पापा ने कहा, हम प्रभु में रहते हैं जिससे हम उनकी गवाही दे सकें। हमारी गवाही से कलीसिया बढ़ती है। यह अंतरंगता का रिश्ता है, यह रहस्यमय है। यह केवल रहस्यवादियों या मिस्टिकों के लिए नहीं है, यह हम सभी के लिए है। उस अंतरंग संवाद में प्रभु मौजूद हैं, पिता हम में मौजूद है, और पवित्र आत्मा भी हम में मौजूद है। वे हम में बने रहते हैं और हम उसमें बने रहते हैं। अपने प्रवचन के अंत में संत पापा ने कहा, प्रभु हमें इस अंतरंगता के रहस्य को समझने और महसूस करने की कृपा दें, हम जीवन भर प्रभु में बने रहें और फल प्रदान कर सकें। और संत पापा फ्रांसिस ने बुधवारीय आम दर्शन के दौरान पोलैंड के श्रोताओं का अभिवादन कर कहा, आज माता कलीसिया फतिमा की माता मरियम की याद में त्योहार मनाती है। माता मरियम ने बच्चों को दर्शन देकर पूरी दुनिया के लिए अपने संदेश को दिया। संत पापा फ्रांसिस ने अपने पूर्ववर्ती संत पापा जॉन पॉल द्वितीय की याद कर कहा, संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने हमले के समय में फतिमा माता मरियम की ममतामयी सुरक्षा का अनुभव किया था। संत पापा ने बताया कि 18 मई संत पापा जॉन पॉल द्वितीय की जन्म की 100वीं वर्षगांठ है। इस दिन वे संत पेत्रुस महागिरजाघर के अंदर स्थित संत पापा जॉन पॉल द्वितीय की समाधि पर प्रातःकालीन मिशा का अनुष्ठान करेंगे। उधर कोलंबिया के धर्माध्यक्षों ने अपने वेबसाइट पर सभी ख्रिस्तीय परिवारों को फतिमा माता के त्योहार के दिन एक साथ रोजरी प्रार्थना करने के लिए आमंत्रित किया है। आज बुधवार को स्थानीय समय अनुसार शाम 5 बजे और रात्रि 11 बजे क्रिस्टो विशन चैनल द्वारा प्रेरितिक राजदूत धर्माध्यक्ष महाधर्माध्यक्ष और सभी ख्रिस्तीय परिवार एक साथ मिलकर रोजरी प्रार्थना करेंगे। कोलंबियाई धर्माध्यक्ष सम्मेलन के महासचिव ने बताया कि उन्होंने एक ऐसा वीडियो बनाया है जिसमें देश के सभी धर्माध्यक्ष रोजरी प्रार्थना में महिमा के भेद को लेकर रोजरी प्रार्थना करते हुए दिखाई देंगे। बुधवार 13 मई को इस वीडियो के जरिए सभी विश्वासी और धर्माध्यक्ष अपने अपने परिवारों में रोजरी प्रार्थना कर पाएंगे और इस कठिन समय में महामारी को दूर करने हेतु फतिमा माता मरियम से याचना करेंगे। पुर्तगाल के कोवा द एरिया पहाड़ी में 13 मई 1917 को माता मरियम ने पहली बार 3 बच्चों लूसिया, फ्रांचेस्को और जसिंता को दर्शन दिया था। इस पहल की शुरुआत कोलंबियाई धर्माध्यक्ष सम्मेलन द्वारा महामारी में ख्रिस्तियों के साथ एकजुटता और परिवारों को साथ देने के लिए की गई है। उधर मंगलवार को बड़े सुबह संत पीटरसन बर्ग के संत जॉर्ज अस्पताल में आग लगने से कम 5 कोविड रोगियों की मौत पर रूस शोक व्यक्त कर रहा है। आपातकालीन अधिकारियों ने कहा कि कोरोना वायरस मरीज जो वेंटिलेटर पर थे उनकी गहन देखभाल इकाई में विस्फोट के बाद मौत हो गई। आधे घंटे के भीतर आग पर काबू पा लिया गया। संत पीटरसन बर्ग की पुलिस ने आग की आधिकारिक जांच शुरू की है। रूसी मीडिया के सूत्रों के हवाले से कहा गया कि दोषपूर्ण वेंटिलेटर के कारण विस्फोट हो सकता है, लेकिन यह रूस के कोरोना वायरस अस्पताल में पहला घातक विस्फोट नहीं था। शनिवार को राजधानी मास्को के एपासो काकोस्टी अस्पताल में आग लगने से 1 मरीज की मौत हो गई। रविवार देर रात को मास्को के बाहरी इलाके के एक नर्सिंग होम क्रासन गोस्फोर्क में आग लगने से कम 9 लोगों की मौत हो गई। नर्सिंग होम के अधिकारियों ने कहा कि बुजुर्गों के लिए बनी एक प्राइवेट वार्ड में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट के कारण विस्फोट हुआ। अधिकारियों ने कहा कि नर्सिंग होम में फायर अलार्म और अन्य अनिवार्य उपकरणों का अभाव था। पुलिस ने अग्नि सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के आरोप में उसके मालिक को हिरासत में ले लिया है। उधर सोमवार 18 मई को संत पापा फ्रांसिस का पवित्र मिशा समारोह का अंतिम सीधा प्रसारण होगा, जो करीब 2 महीने से अधिक समय तक चला और दुनिया भर के लाखों विश्वासियों ने पवित्र मिशा में भाग लिया। इटली के गिरजाघरों में विश्वासियों के लिए पवित्र मिशा उसी दिन 18 मई को फिर से शुरू करने की अनुमति मिली है। अतः संत पापा फ्रांसिस ने अपने दैनिक मिशा का सीधा प्रसारण बंद करने का निर्णय लिया है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।